ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी अभी आप सबने एक बहुत सुंदर गीत सुना। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया है। किस लिए? नवयुग का निर्माण करने। शिव ने उनमें स्थान लिया है। तो शिव परमात्मा ने जिस माध्यम को चुना, नव विश्व, नई दुनिया, सतयुग रचने के लिए ब्रह्मा बाबा उनको नाम दिया, तो उनकी जीवन कहानी क्या है वो आज हम आपको बताना चाहेंगे। और मेरा ये सौभाग्य है कि उनसे हमारी बहुत करीब की मुलाकात हुई है, क्योंकि हम 1960 में ज्ञान में आए और ब्रह्मा बाबा ने 1969 में अपना देह त्याग किया। और मुंबई की हूँ मैं, तो मुंबई में भी बाबा आते रहते थे। तो इसलिए ये भी मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि उनको नज़दीक से देखने का भी एक भाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज मैं आपको उनकी दिव्य कहानी चित्रों के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ, जिसको हम कहते हैं यज्ञ का इतिहास। कैसे शिव परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ये यज्ञ रचा है, और इस यज्ञ में हम सब ये ज्ञान शिव परमात्मा से प्राप्त कर रहे हैं। तो यज्ञ मतलब वो तो जव तिल घी डालते हैं यज्ञ में, और हम कहते हैं जव माना ये तन, लंबा जव होता है ना, तो तन, और तिल माना वो बहुत सूक्ष्म होता है तो वो मन, और घी माना धन। तो तन मन धन, एक ब्रह्मा बाबा ने अपना लगाया, एक बीज डाला, और उससे आज वट वृक्ष के रूप में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खड़ा है, जिसकी ब्रांचेस शाखाएं 140 देशों में है। और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है, और आप जैसे लाखों परिवार नियमित विद्यार्थी बन करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विभिन्न सेवा केंद्रों पर सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा लेते हैं। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा कौन थे और कैसे उन्होंने एक बीज डाला और आज वो वट वृक्ष के रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है, तो ये लगभग जैसे बताया 140 देश, और उसमें भी जहाँ तक मैं समझती हूँ कम से कम 1000 से भी ऊपर विदेशों में भी हमारे केंद्र होंगे। भारत में तो 10,000 से भी अधिक केंद्र है। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा कौन थे? उनका पूर्व नाम था दादा लेखराज, और लखीराज बाबू के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे। कलकत्ता में उनका बहुत बड़ी दुकान थी, और वैसे बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे। उस समय तो अविभाजित भारत था, ये तो विभाजन के बाद सिंध पाकिस्तान में चला गया, लेकिन पहले तो एक भारत का ही वो हिस्सा था। तो हैदराबाद सिंध में रहते थे और कलकत्ता में उनका बहुत बड़ा दुकान था, वहाँ भी घर था और बहुत बड़ा व्यापार था। राजाओं महाराजाओं के साथ उनका उठना बैठना होता था और खास करके अंग्रेज, उस समय अंग्रेजों का राज्य था तो अंग्रेज भी उनके दुकान पर आते थे और बहुत हीरे जवाहरात खरीद के ले जाते थे। तो इतना बड़ा व्यापार था और बहुत ही रॉयल थे राजा महाराजा। बाबा के बाबा उनके पास जाता था बिजनेस के लिए, क्योंकि वो बुलाते थे तो वो कहते थे कि भगवान ने एक बहुत बड़ी भूल की है, भगवान को तो आपको राजा बनाना चाहिए था लेकिन आप एक व्यापारी बने। पर ये भी एक कैसे नोंद है ड्रामा के अंदर कि वही आदि में श्री नारायण की आत्मा, वही अंतिम जन्म में साधारण रूप है लेकिन वही कितने रॉयल उनके संस्कार थे। तो ब्रह्मा बाबा लौकिक में दादा लेखराज, उनका बहुत सम्मान था समाज में, बहुत बड़े धनी तो थे ही पर जितने ही धनी थे उतने ही बड़े दानी थे। जो भी उनके द्वार पर आता था वो कभी हाथ खाली नहीं जाता था। कई आते थे, बेटी की शादी करनी है, दहेज मांग के लिए भी धन मांगते थे, कोई भी ऐसे विशेष कार्य के लिए आते थे धन के लिए तो बाबा उनको सहर्ष देते थे। तो जितने धनी थे उतने दानी थे, उतने ही बड़े भक्त थे, विष्णु की भक्ति करते थे, कट्टर वल्लभाचारी पक्के वैष्णव बाबा थे। तो कैसे परमात्मा ने उनके जीवन में एक इतना बड़ा परिवर्तन किया, जो सब कुछ माताओं बहनों के आगे समर्पित कर दिया और इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो परमात्मा ने ही उनका नाम रखा प्रजा पिता ब्रह्मा, सारी प्रजा का पिता। तो कैसे दादा लेखराज से ब्रह्मा बने और ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ने कैसे यह नई सृष्टि रची, वो पूरा इतिहास हम आपको सार रूप में बताना चाहेंगे। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जैसे बताया बाबा ने बहुत गुरु किए थे और 12 तो गुरु किए थे और बहुत दान पुण्य करते थे बाबा। गुरु भी बाबा को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। तो जितने ही वो दानी थे जैसे बताया, उतने ही वो सत्य की खोज में थे, सत्य क्या है, ईश्वर कौन है, और उस खोज में उन्होंने 12 गुरु किए अपने जीवन काल में, 12। क्योंकि जिस जिस गुरु के पास जाते थे उनसे तो पहले प्रश्न पूछते थे, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं संसार में, जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर कौन है, वो कहाँ है, क्या हमारा उनसे संबंध है, कैसे हम उनसे मिल सकते हैं, क्या हमको उनसे प्राप्ति होगी। यानी इस प्रकार के जो आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं वो बाबा पूछते थे उनसे, क्योंकि सत्य की खोज थी। लेकिन उनको कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था तो इसलिए गुरु की फिर भी खोज चलती रही, जैसे सत्य की खोज होती रही। तो कैसे वो सत्य की खोज में बाबा बहुत भक्ति भी करते थे और विशेष रूप से बताया विष्णु की भक्ति करते थे। तो विष्णु उनके इष्ट थे, श्री नारायण। तो कैसे उनका फोटो हमेशा बाबा अपने साथ रखते थे, उनका ही ध्यान करते थे। तो कैसे अचानक, ये अचानक हो गया 1936 में, आज से 85 साल पहले, उस समय बाबा की आयु लगभग 60 वर्ष की थी, पोतरे दोतरे सब थे, तो कैसे अचानक बाबा को, बाबा भक्ति में तल्लीन थे कि अचानक बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा कि चतुर्भुज विष्णु उनके सामने आके खड़े हो गए, साक्षात्कार मूरत बन के उनको साक्षात्कार कराया। और विष्णु चार भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी उनके सामने आके उपस्थित हुए और उनको वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम्, मैं चतुर्भुज विष्णु हूँ, तुम भी मेरे जैसे हो। और बाबा ने देखा उस साक्षात्कार में विष्णु के कई रूप, क्योंकि कई मंदिर है विष्णु के, तो बाबा के सामने कई रूप विष्णु के सामने आते गए आते गए आते गए, और हर एक विष्णु के रूप ने बाबा को यही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम् तत्त्वम्। तो बहुत देर तक ये अनुभव उनको हुआ, और जब ध्यान से नीचे उतरे तो उनके मन में फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ, ये तत्त्वम् का वरदान कैसे मिला, मैं तो इन जैसा नहीं हूँ। तत्त्वम् माना तुम भी मेरे जैसे हो, तो मैं तो इन जैसा नहीं हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ। भक्ति बहुत करते थे, कई मंदिरों में जाते थे, तीर्थ बहुत किए, अमरनाथ की भी यात्रा की थी, हर साल बाबा तीर्थों पर जाते थे, और इतने बड़े भक्त थे। लेकिन उनको ये अनुभव हुआ कि जैसे मुझे भक्ति का फल मिल गया है, क्योंकि विष्णु ही उनके इष्ट थे। लेकिन ये जो वरदान दिया अहम चतुर्भुज तत्त्वम्, इसका मतलब क्या है? अब ये मतलब पूछने के लिए बाबा ने, बाबा अपने जो उस समय के गुरु थे उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है, अहम चतुर्भुज तत्त्वम्, तुम मेरे जैसे हो, मैं तो इन जैसा नहीं हूँ, मैं तो इनका दास हूँ, सेवक हूँ। यही हम मानते हैं भक्ति में कि हम तो दास है, हम नीच है, पापी है, कपटी है, आरती में गाते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी पापी, कृपा करो भरता। ये तो उनकी कृपा से हमें उनका दर्शन हुआ, लेकिन मैं इन जैसे कैसे हूँ? अब गुरु भी उनको क्या जवाब दे, कैसे मालूम हो कि क्यों ऐसा वरदान मिला और क्यों इस प्रकार से साक्षात्कार हुआ। तो गुरु ने कहा कि आप उसके लिए एकांतवास में चले जाओ, कहीं एकांत में आप जाएंगे तो हो सकता है आपको इसका जवाब मिले, कुछ और आपको अनुभव हो जिसके आधार से आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा वरदान मिला कि तुम भी मेरे जैसे हो। तो बाबा ने सोचा मैं एकांतवास में कहाँ जाऊं, तो बनारस गए। तो बनारस में उनके एक मित्र रहते थे, उनकी बहुत बड़ी कोठी थी, तो वो उस कोठी के बगीचे में, उनका मकान उनके बगीचे में रोज संध्या काल को बाबा पेड़ के नीचे बैठ करके विष्णु का ध्यान करते थे। तो अचानक क्या हुआ, एक दिन जैसे ही ध्यान में बैठे थे तो उनको इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा कि तीन रूप से इस सृष्टि का विनाश हो रहा है, एक अणु युद्ध के रूप में, अणु बम एक गिरा और आग ही आग जैसे निकली, फिर दूसरा ग्रह युद्ध के रूप में जिसमें रक्त की नदियां बहती हुई देखी, लोग कैसे मर रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बंदूकें चल रही है आदि आदि, और फिर देखा कैसे सब लाशें पड़ी है। अणु युद्ध में देखा कैसे सब खाक हो गया सब कुछ, और ग्रह युद्ध में देखा कि कैसे रक्त की नदियां चारों ओर बह रही है और सब डेड बॉडी मुर्दे जैसे पड़े हैं। बड़ा बाबा को एक अंदर में वैराग आ गया कि ये क्या, ऐसे दुनिया खत्म हो जाएगी। और फिर तीसरा विनाश का रूप देखा जिसमें प्राकृतिक आपदाओं द्वारा विनाश, कैसे बाढ़ आई और सब कुछ साफ करके ले गई और चारों ओर आग ही आग, फिर बाढ़ तो भूकंप, सब मकान कैसे नीचे गिरते गए, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, ऊंची ऊंची मंजिल वाले इमारतें कैसे ताश की पत्तों की तरह सब गिरे और धीरे धीरे सारा जैसे संसार खत्म। तो बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। तो यही काहे भगवान, ये हमको क्या दिखा रहे हो, क्या ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी? फिर भगवान ये दुनिया तुमने बनाई क्यों? क्योंकि फिर भी मन में प्रश्न उत्पन्न हुए कि दुनिया बनाई क्यों अगर ऐसे ही खत्म हो जाने वाली है दुनिया। तो फिर भी मन में प्रश्न उत्पन्न हुए, अब उसका फिर उत्तर कहाँ मिलेगा? तो फिर बाबा बहुत ज्यादा ही एकांत में चले गए और फिर एक दिन उनको कैसे सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ। पर सतयुगी माना एक तरफ विनाश का साक्षात्कार और दूसरी तरफ एक नई दुनिया का साक्षात्कार और फिर तीसरी तरफ परमधाम का साक्षात्कार, ये सब उनको साक्षात्कार हुए बनारस में। और कैसे देखा कि एक परमधाम में एक बिल्कुल सुनहरा लाल प्रकाश की दुनिया है जहाँ छोटे 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 सितारे माना आत्माएं वहां पर विराजमान हैं और धीरे धीरे एक एक सितारा वो धरती पर आ रहा है। और धरती पर आते आते बाबा ने देखा कि इस धरती पर पूरा परिवर्तन हो गया। वो जो इतना संसार सब नष्ट हो चुका था वो अब बदल करके एक सतयुगी दुनिया बन गया जहाँ चारों ओर देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं, प्रकृति अपने चरम सुंदरतम स्वरूप में बाबा ने देखा। इतना सुंदर वातावरण, चारों ओर हरियाली, चारों ओर कैसे बाग बगीचे, देवताएं उसमें रास कर रहे हैं, हीरे जवाहरातों के, सोने के महल। और बाबा को ये जब साक्षात्कार हुआ तो उसमें फिर और क्या देखा कि उस सुंदर हीरे सोने के महल से श्री लक्ष्मी और श्री नारायण प्रकट हुए और बगीचे में जैसे विचरण कर रहे हैं, चारों ओर खुशहाली है, संगीत बज रहा है। और बाबा को एक आकाशवाणी आई, जैसे आकाशवाणी उनको हुई और उसमें क्या क्या शब्द थे, लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आएगी और इस सतयुगी दुनिया की स्थापना तुम्हारे द्वारा होगी। तुम्हारे द्वारा इस सतयुगी दुनिया की, स्वर्ग की दुनिया की स्थापना होगी। बस ये साक्षात्कार हुआ। अब इसके बाद फिर और प्रश्न उठे उनके मन में कि ऐसी दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया मैं बनाऊंगा? तुम्हारे द्वारा होनी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? मेरे पास कौन सी शक्ति है जो मैं दुनिया को स्वर्ग बना दूंगा? तो हे भगवान, उसके लिए मुझे करना क्या होगा? हाँ, क्योंकि उनके मन में तो प्रश्न उत्पन्न होते ही थे, लेकिन अब उनका समाधान कौन देवे उनको? परंतु उनको अंदर में आया कि अगर भगवान को मुझसे इतना ऊंचा कार्य कराना है तो मैं तो बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो ये बिजनेस को तो बंद करना होगा, खत्म करना होगा, तभी तो कुछ मैं ईश्वर का कार्य कर सकूंगा, क्योंकि उसमें ही पूरे जैसे व्यस्त थे। तो बाबा बनारस से कलकत्ता गए वापस, जहाँ उनके पार्टनर रहते थे, बिजनेस पार्टनर। तो अपने पार्टनर को सब बता दिया कि कैसे मुझे ये साक्षात्कार हुए हैं और भगवान मुझसे एक बहुत बड़ा कार्य करवाना चाहते हैं, एक विश्व परिवर्तन कर स्वर्ग इस धरती पर लाना वो कार्य करवाना चाहते हैं, तो मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ। और बाबा ने इसकी दृष्टि बदल गई सारी, एकदम वैराग आ गया इस संसार से। और हीरे जो जिनका व्यापार करते थे बाबा, उनको पत्थर दिखाई देने लगे, सारी दृष्टि बदल गई, वृत्ति बदल गई, सब कुछ बदल गया। और बिल्कुल जैसे भगवान के कार्य में मुझे तल्लीन होना है, पर यही उन्होंने अंदर में प्रण किया। तो फिर बाबा को उस समय जब बाबा कलकत्ता में थे तो उनको घर से तार आई, उस समय तारे होती थी, टेलीग्राम में आई कि अभी जल्दी घर आओ, हैदराबाद सिंध आओ, क्योंकि पोतरे का जन्म हुआ था। तो पोतरे का जन्म माना बहुत बड़ा आशाद माना, बाबा पार्टी भी देते थे, लेकिन कभी भी शराब या मीट या कोई भी उस प्रकार का भोजन नहीं रखते थे, क्योंकि पूर्ण वल्भाचारी पक्के वैष्णव थे बाबा। तो लेकिन पोतरा पैदा हुआ तो उस खुशी में तो बहुत कुछ करना था, तो बाबा को वापस बुलाया। अब बाबा ने तो अपना सारा वाइंड अप कर लिया, तो पार्टनर को तो जो उनका हिस्सा था वो दिया और बाकी जो अपना हिस्सा था वो लिया, और टेलीग्राम में ही जवाब दिया उनको। वो टेलीग्राम भी बहुत नशे का टेलीग्राम था। क्या लिखा? अलफ को अल्लाह मिला और बे को मिली झूठी बादशाही। अलफ माना अलफ बे कहते ना उर्दू में, तो अलफ माना वो खुद, उनको अल्लाह मिला, ईश्वर मिल गया, और बे को मिली झूठी बादशाही, की दुकान और बाकी जो भी था वो उनको दिया। और अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलफ को, माना आपने जो मुझे तार भेजी वो मुझे मिली है, हुआ रेल का राही, मैं ट्रेन से कलकत्ता से हैदराबाद आ रहा हूँ, हुआ रेल का राही। अब जब घर में ये तार परिवार वालों ने पढ़ा तो उनको तो समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है, अल्लाह कौन, बे कौन, झूठी बादशाही कौन, अल्लाह कैसे मिला, कुछ भी नहीं। पर लास्ट जो सेंटेंस था, वाक्य था, उसको समझा कि हुआ रेल का राही, माना मैं ट्रेन से वहां हैदराबाद सिंध जा रहा हूँ। तो उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन जैसे बाबा वापस पहुंचे तो इतना जो परिवर्तन बाबा ने देखा उससे तो उनके जीवन में वैराग आया था। तो परिवार वालों ने सोचा ये क्या हो गया उनको, कभी ऐसे नहीं सोचा था कि बाबा इस प्रकार से बिल्कुल त्यागी बन जाएंगे, ऐसे न्यारे बन जाएंगे, ऐसे सब धंधा धोरी सारा बिजनेस व्यापार सब कुछ से दुनिया ही जैसे छोड़ करके आ गए, सब कुछ वाइंड अप करके आ गए। तो इसी प्रकार बाबा का बिल्कुल सिंपल फॉर्म हो गया, धोती कुर्ता तो वैसे भी पहनते थे राजाओं महाराजाओं के साथ, तो अच्छा दिखा, पहले फोटो देखा होगा, लेकिन सिंपल, इतने सिंपल हो गए जो सब आश्चर्यचकित होते थे कि इनको हो क्या गया। पर बाबा को अपना नशा था। और फिर कैसे एक दिन अपने घर में थे हैदराबाद सिंध में, क्योंकि एकांत में रहने लगे बाबा, बाबा को बातचीत करना किसी के और परपंच में आना बिल्कुल पसंद नहीं था, एकदम शांत एकांत पसंद थे। तो एक दिन वो अपने कमरे में बैठे थे कि अचानक बाबा को शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा बहुत लाइट 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 एकदम इतना प्रकाशमय स्वरूप बाबा ने देखा, और बहुत ही प्यारा स्वरूप था, बहुत आनंददायक वो प्रकाश स्वरूप था। और धीरे धीरे वो प्रकाश जैसे उनके नजदीक आया, और नजदीक आते 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 उनके अंदर प्रवेश हो गया। तो ऐसे बाबा ने देखा वो ज्योति थी, वो ज्योति उनके निकट आई और निकट आते आते उनमें प्रवेश हो गई, ये बाबा ने देखा। और फिर बाबा ने अनुभव किया कि कैसे, बाबा ने अनुभव किया कि वो जो ज्योति स्वरूप था वो उनमें प्रवेश हुआ और उनके मुख से आवाज निकली जैसे आकाशवाणी निकली, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निज आनंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं प्रकाश रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। उनके मुख से ये शब्द निकले और बाबा की आंखें बंद थी। अब उनके घर वाले आ गए देखने बाबा को क्या अनुभव हो रहा है, लेकिन बाबा की आंखें बंद थी और ये जैसे आवाज बहुत गहरी आवाज उनके मुख से निकल रही थी। तो जब वो ध्यान से उतरे तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या देखा? तो बाबा ने कहा एक कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, बहुत तेजोमय थी, बहुत मीठी थी, बहुत प्यारी थी, और वो धीरे धीरे मेरे नजदीक आई और मेरे में समा गई। ये बाबा ने कहा, और वो शक्ति मुझसे क्या करवाएगी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैंने अनुभव किया, वो प्रकाश और शक्ति मैंने अनुभव की। बस फिर तो क्या हुआ कि चमत्कार होने लगे। चमत्कार क्या होने लगे, बाबा जैसे ही खड़े होते थे तो बाबा वो जो सफेद वस्त्रधारी धोती कुर्ता वाले बुजुर्ग व्यक्ति, वो जैसे गायब, और श्री कृष्ण का छोटा रूप उनके सामने जैसे आ जाता था लोगों के सामने। तो वो बाबा बूढ़ा खत बूढ़ा नहीं दिखाई देता था, छोटा कृष्ण बच्चा कृष्ण उनको दिखाई देता था, मोर मुकुटधारी बांसुरी बजाता हुआ। तो लोगों को तो समझ में नहीं आया कि ये क्या चमत्कार है। तो एक जैसे आवाज फैल गया हैदराबाद सिंध में कि एक दादा लेखराज है, उनके पास चमत्कारिक शक्ति है, जो उनके पास जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो दूर दूर से लोग आने लगे ये देखने लिए कि श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होते हैं इनको देखने से इनके, और ये कैसे गायब हो गया, कृष्ण वहां खड़े हैं। तो इतनी बड़ी न्यूज बन गई जो अमेरिका में टाइम मैगजीन निकलती है, जहाँ इंटरनेशनल न्यूज आती है, उस मैगजीन में भी छप गया, वो न्यूज आई कि हैदराबाद सिंध भारत में, तो भारत ही था, 1936 की ये बात है। तो वहां हैदराबाद सिंध में एक व्यक्ति है जिसके पास एक चमत्कारिक शक्ति है। अब समझ में तो उनको आया नहीं कुछ, और उनको देखने से वो गायब हो जाता है और कृष्ण दिखाई देता है सबको। तो मानो साक्षात्कारों की धूम ये लोगों को अनुभव हुआ। तो दूर दूर से लोग आते थे, तो एक बहुत बड़ी जैसे क्रांति हो गई उस समय। और दूसरी क्रांति क्या हुई, दूसरी क्रांति क्या हुई कि लोगों को वहां तो श्री कृष्ण का अनुभव होता था, बाबा के सामने आते थे, लेकिन कईयों को घर बैठे भी होने लगा। घर बैठे वो एक बगीचे में श्री कृष्ण को देखते थे तो जैसे उनके पास जा रहे हैं, और कृष्ण श्री कृष्ण दूर होता गया और ये बूढ़ा बाबा ब्रह्मा बाबा धोती कुर्ता वाला उनके सामने आ गया, और श्री कृष्ण दूर से कहता अगर मेरे से मिलना है पहले इनके पास जाओ, इनसे मैं मिलू, इनके पास जाएंगे वहां मैं मिलूंगा। तो घर बैठे भी होने लगा। अब कौन, सब तो इनको जानते नहीं थे, लेकिन जरूर ढूंढने लगे कि ऐसा कौन है सफेद वस्त्रधारी जिनके पास जाने से कृष्ण के दर्शन होते। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज हो गई। तो इस प्रकार से हैदराबाद सिंध में एक साक्षात्कारों की क्रांति हो गई। उस समय कुल्फी मिलती थी, एक पैसे की कुल्फी, तो पैसे की कुल्फी एक पैसा, तो जैसे कुल्फ एक पैसे पैसे कुल्फी, वैसे पैसे पैसे साक्षात्कार, इस प्रकार के लोग स्लोगन बोलते थे और बहुत आते थे बाबा के पास। और दूसरी क्रांतिकारी बात क्या हुई, उसमें जो महिलाएं थी, बहनें माताएं कुमारियां, उनको ज्यादा साक्षात्कार हुए, पुरुषों को कम। और वहां हैदराबाद सिंध जो था, वहां पर सिंधी लोग ही रहते थे और वो सब बिजनेसमैन थे, तो पुरुष लोग तो बाहर रहते थे, उनकी तो बिजनेस सारी दुनिया में, अमेरिका जापान इंग्लैंड हांगकांग सिंगापुर इंडोनेशिया श्रीलंका, सब जगह उनकी बिजनेस होती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये उनका था। और बेचारी जो स्त्रियां थी वो घर में, वो चारों दीवारों में जैसे कैद, कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं, कोई बाहर आना जाना नहीं, बस चार दीवारों में, और बड़ी शोषित थी। इतनी शोषित माना जैसे उनको उनको समाज में उनका कोई स्थान ही नहीं था, बस खाली घर में रहना, बस बच्चों को पालना, यही बस यही, बाकी कुछ संसार क्या है दुनिया क्या है उनको कुछ पता नहीं। और पुरुष लोग तो सारा विश्व घूमते थे, इस प्रकार की परिस्थिति थी। तो नारी का तो कोई जैसे कोई समाज में स्थान ही नहीं था, और पर्दे नशीन रहती थी, हर वक्त पर्दा माना सिर तो ढकना लेकिन मुंह भी ढकना, तो वो सब स्थिति थी। और ऐसे समय पर इन बहनों माताओं को साक्षात्कार हुए घर में, और फिर चाहे बाबा के पास सत्संग में जाती थी तो अब इतना बड़ा एक क्रांति हो गई। अब कौन कौन उसमें आए, मैं आपको थोड़ा सा मिसाल दूं। आप देख रहे होंगे ये भी, बाबा के साथ मम्मा जिनका नाम था राधे, ये उस समय 16-17 साल की थी और स्कूल में पढ़ती थी। तो इनके फादर की अचानक डेथ हो गई, क्योंकि वो भी बड़े बिजनेसमैन थे और अचानक घाटा पड़ा उनकी बिजनेस में, तो इतना घाटा पड़ा जो उनको सदमा पे पहुंचा और हार्ट फेल हो गए, मर गए। तो अब उनकी जो माँ थी इनकी, वो तो इतना रोती थी क्योंकि वहां अगर स्त्री विधवा बनी ना तो उसके लिए तो कोई खैर नहीं, कोई उनको पूछता तो नहीं था लेकिन उनका तिरस्कार करते थे। अगर वो रास्ते पर जाती थी तो दुकान के नजदीक कहीं गई और मना विधवा है तो लोग कहते थे हट जा यहाँ से, और वो जाने के बाद पानी छिड़कते थे कि अब सुगन न हमको मिले जीवन में, ऐसे कुछ था। और एक साल तक पूरा काले काले कपड़े पहनकर स्यापा करना, हाई दोष मचाना, रोना, ये सब चलता था, बहुत बुरा हाल था स्त्रियों का। अब ये तो राधे तो बहुत सुंदर भी थी और बहुत होशियार भी थी, टैलेंटेड थी, स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स तो लेती थी, लेकिन कलाएं बहुत थी, नृत्य कला, संगीत कला, गायन कला, ये सब इनके अंदर थे, अवार्ड्स भी लेती थी स्कूल में। अब इसने जब अपनी माँ की ऐसी दशा देखी तो उनको तो सहन नहीं हुआ, मतलब ये माँ ऐसी, चलो अब गुजर गया कोई तो हम ऐसे बैठ के स्यापा करेंगे तो वापस तो आत्मा तो आएगी नहीं। लेकिन किसने उसको कहा कि अपनी माँ को आप दादा के पास ले जाओ, बाबा के पास, और उनको शांति मिलेगी। तो जैसे बाबा के पास ये ले गई तो इनकी माँ ने बाबा को देखा और एकदम श्री कृष्ण का उनको साक्षात्कार हो गया। तो वो तो जो रोती रोती आई वो हंसती हंसती गई, है ना, साक्षात्कार किया श्री कृष्ण का, तो उनको बहुत खुशी, जैसे खुशी में हंस हंस के, जैसे साक्षात्कार में जैसे नाचने लगी कृष्ण के साथ। तो इस प्रकार से उसने अनुभव किया, तो ये भी एक न्यूज बन गई कि राधे अपने माँ को ले आई और वो रोती रोती आई, हंसती हंसती गई, है ना, ये बिग न्यूज बन गई। छोटा सा शहर था हैदराबाद से तो। और फिर बाबा ने दोनों, और ये बहुत अच्छा गाती थी, बाबा इनके पिता को भी जानते थे, बिजनेसमैन तो आपस में एक दो को जानते हैं। तो बाबा ने उस समय ओम की ध्वनि करते थे, ओम इतनी गहरी आवाज में ले जाते थे, और ओम की ध्वनि होते ही जैसे साक्षात्कार करने लग जाते थे। तो ये भी एक न्यूज बन गई थी। तो अब इनकी माँ ने भी उस रूप से साक्षात्कार किया, और फिर और तो कोई घर में था नहीं, इनके भाई भी गुजर गए थे तो ये दोनों ही थे। तो बाबा ने इनको कहा कि आप भी ओम की ध्वनि करो। तो जैसे इसने ओम की ध्वनि की, आवाज तो इनकी बहुत सुरीली थी, तो ओम की जैसे ध्वनि इन्होंने की तो इनसे राधे का साक्षात्कार होने लगा, बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार और इनसे राधे का साक्षात्कार। तो जैसे राधे कृष्ण, हाँ, और ये तो 16-17 साल की थी और बाबा तो 60 वर्ष के थे, इतने बुजुर्ग थे, लौकिक में इनका कोई संबंध नहीं था आपस में, लेकिन राधे कृष्ण तो जैसे ये जो भी आते थे उनको इस प्रकार से अनुभव होने लगा। तो इसलिए फिर वो जो बाबा सत्संग करते थे उसका नाम रख दिया ओम मंडली, माना ओम की ध्वनि करने वाली मंडली। और कुमारियां माताएं परिवार के परिवार आने लगे, तो ये इनकी कहानी है। फिर दूसरी है दादी प्रकाशमणि, जो आप यहाँ देख रहे हैं इनका फोटो, ये भी 14-15 साल की थी जब ज्ञान में आई, माना इनको ये जैसे ही आई, इनका फिर इनके अलग कहानी है। इनको सुबह सुबह अनुभव हुआ अपने घर में, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और जैसे उनके पास जा रही है तो वो दूर हट गए और बाबा आगे आए और उसने कहा कि अगर मेरे से मिलना है, कृष्ण ने कहा, तो इनके पास जाओ। अब उनको तो जानती नहीं थी बाबा को, अभी कौन है वो कैसे पता चले। तो दिन में जब स्कूल गई तो वहां सब लड़कियां भी आपस में कह रही थी कि ऐसे ऐसे एक दादा लेखराज है, चलो हम उनके पास जाएंगे, कृष्ण के दर्शन होते, बस कृष्ण के दर्शन होते। जैसे कोई दुकान में सेल लगती है ना, तो चलो 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 वहां सेल है, वहां सेल है, चलो। तो इस प्रकार चलो 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 वहां कृष्ण के दर्शन होते। लेकिन इसने कहा पहले मैं अपने पिता से पूछूं। तो पिता शाम को जब पिता घर लौटे, वो ज्योतिषी थे, तो ज्योतिष विद्या वो जानते थे। और इनके लिए बाबा ने मतलब जो इनके पिता ने जैसे जन्म पत्री में देखा कि ये मीराबाई की तरह बनेगी, मतलब जीवन को श्री कृष्ण को यानी भगवान को अर्पित करेगी। जैसे मीराबाई का जीवन कृष्ण को अर्पित था, और ये शादी नहीं करेगी क्योंकि ये कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, बहुत भक्ति करती थी। कृष्ण उन्होंने पिता ने मंदिर भी बनाया था श्री कृष्ण का, रोज सवेरे उनको जगाती थी, शाम को सुलाती थी, और गीता का पाठ बहुत करती थी। तो अब उनको ये साक्षात्कार हुए, तो पिता के पास जब गई अब बताने कि भाई ऐसे ऐसे हमने सुना है, तो जब तक ये सुना है तब तक पिता ने इनको कहा कि बेटी मैंने सुना है कि यहाँ दादा लेखराज है, उनके पास जाने से कृष्ण के दर्शन होते हैं, और तुम तो कृष्ण की भक्ति बहुत करती हो, तो जरा जाओ देख कर आओ क्या होता है वहां। जैसे कहते तो भाई बेटा बच्चा जाके देख के आओ। तो इनको भी कहा कि आप देख के आओ, पिता की भी परमिशन मिल गई। अब ये तीनों एक ही चीज है तो पहले तो समझा नहीं, लेकिन जब अगले दिन गई और सत्संग में गई तो बाबा को देखते ही एकदम ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया उसने, और एकदम जैसे उसी में मग्न हो गई थी। सत्संग समाप्त हो गया, सब कुछ पूरा हो गया, सब चले गए, लेकिन ये वहीं बैठी रही। अब बाबा इनके पिता को जानते थे, इनकी जीवन इनका भी जो जन्म पत्रिका की बात थी वो बाबा जानते थे, क्योंकि बुजुर्ग एक दो को तो जानते हैं। तो बाबा ने इनको बुलाया, और उस समय बाबा ने एक स्कूल खोला हुआ था, लड़कियों का स्कूल, क्योंकि बाबा को नारी के प्रति बहुत सम्मान था, तो लड़कियों का स्कूल खोला था। और बाबा चाहते थे कि कुछ ऐसे टीचर्स मिले जो उनको अच्छी शिक्षा दे। तो बाबा ने इनसे पूछा, इनका नाम रमा था, आपको कि आप स्कूल में टीचर बनोगी और अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करोगी। तो इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं। तो जब पिता से इन्होंने पूछा तो पिता ने कहा बेटी तुम्हारा तो जीवन ही श्री कृष्ण को अर्पित है। तो पत्र लिख के दिया कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पित करता हूँ। और फिर कैसे वो भी वहां रहने लगी। ऐसे करके कई ऐसी कुमारियां, माताएं, परिवार के परिवार बाबा के पास रहने लगी, और एक छोटा सा अलौकिक परिवार बन गया बाबा के घर में ही जहाँ सत्संग बाबा करते थे। तो एक अलौकिक परिवार बन गया भाई, जो वहां कुमारियां माताएं थी। और फिर इन्होंने कैसे अपना जीवन समर्पित किया, और फिर शिव परमात्मा ने इन सब से एक प्रतिज्ञा कराई कि अपने जीवन को हम पवित्र और योगी बनाएंगे। अब जब ये प्रतिज्ञा की कि हम अपना जीवन पवित्र और योगी बनाएंगे, तो फिर तो विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ कि ये छोटी छोटी कुमारियां और इनों को ऐसा कैसे प्रतिज्ञा करा ली कि अपना जीवन हम पवित्र योगी बनाएंगे। तो बाबा कहते थे ये मैंने नहीं किया, ये मेरी शक्ति है ही नहीं, क्योंकि ये भी क्रांति हो गई पूरी। जैसे साक्षात्कारों की क्रांति थी, वैसे कुमारियां छोटी छोटी उनको दिव्य साक्षात्कार होते थे, वो जैसे आती गई और परिवार के परिवार जैसे समर्पित होते गए और प्रतिज्ञा की। तो बाबा कहते थे ये मैंने नहीं किया, जब शिव परमात्मा ने मुझे भी ये प्रतिज्ञा कराई, मैंने भी इनके साथ साथ की। और फिर बाबा ने 8 बहनों के नाम पर, ये सब शिव परमात्मा के आदेश अनुसार, 8 बहनों के नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी विल कर दी, जिसमें मम्मा थी, दादी प्रकाशमणि थे, सब छोटे छोटे थे उस समय, कोई 16 साल के, कोई 18 साल के, कोई 20 साल के, उस प्रकार के। तो ये भी दूसरी क्रांति थी। पहली क्रांति थी साक्षात्कारों की, दूसरी क्रांति थी कि छोटी छोटी कुमारियां कैसे समर्पित है, जो आज हमारी दादियां जिनको हम कहते हैं वो थी। तो उस समय तो छोटी होगी, 85 साल 86 साल पहले की बात है। और फिर ये दूसरी क्रांति हुई, और फिर जब विरोध हुआ तो उसके बाद बाबा चले गए कराची, हैदराबाद से सिंध। कराची बहुत दूर नहीं था, जैसे मुंबई और पूना, तो पूना छोटा शहर है, मुंबई तो उसके भेद में बहुत बड़ा है। तो कराची चले गए बाबा, क्योंकि इतने सारे भाई बहनें समर्पित हुए तो कराची गए बाबा। तो कराची में क्लिफ्टन बीच है, जैसे बॉम्बे में चौपाटी है वैसे ही वहाँ क्लिफ्टन बीच है। तो वहाँ रोज सुबह सैर करने जाते थे, एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज जैसे ये देखो, ये एक्सरसाइज की ड्रेस है, कमीज और शॉर्ट्स पहन करके एक्सरसाइज करते थे। तो 14 साल इन्होंने कराची में बिताया, 1938 से लेकर 1950, 13 साल वहाँ, 37 एंड 38, 38 से लेकर 50 तक। तो 14 साल दुनिया की निगाहों से बिल्कुल दूर रहे। करीब 385 भाई बहने थे, 385 अलग अलग मकानों में रहे, तो दुनिया का मुंह नहीं देखा। और एकदम जैसे तपस्या में रहती थी, सारी संसार की सब बातों से दूर अपने अंदर में आत्मा की शक्ति को बढ़ाया। और उन्हीं वर्षों में 1937 से लेकर के 1950 तक, ये 14 साल कैसे दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक परिवर्तन तो ये आया कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक, 6 साल तक विश्व युद्ध हुआ। और उस विश्व युद्ध में बहुत लोग मारे गए, और वो विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए, दो बॉम्ब्स गिराए, और उससे पूरा शहर का शहर नष्ट हो गया। तो ये तो बाबा को साक्षात्कार पहले ही हो गया था कि एटम बॉम्ब से कैसे विनाश होता है। तो बाबा पूछते थे शिव बाबा से, बाबा ये क्या विनाश है, क्योंकि इतने सारे शहर का शहर तबाह हो गया। तो बाबा ने उनको कहा, ये तो रिहर्सल है, ये रिहर्सल है, केवल दो बॉम्ब ही गिरे हैं, ये तो रिहर्सल है। फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तो उस समय रक्त की नदियां बही, क्योंकि बंटवारे के समय हिंदू मुसलमानों के बहुत राइट्स हुए, बहुत झगड़े हुए, कितनी खून रेजी हुई जब शिफ्टिंग हो रही थी, तो कितने हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, बहुत लोग मारे गए। वो गृह युद्ध का रूप था, जैसे जब बंटवारा हुआ, अंग्रेज जाने से पहले ये बंटवारा करके गए, तो वो गृह युद्ध का रूप था। तो बाबा से पूछते थे, बाबा ये विनाश है, बाबा कहते थे नहीं, ये रिहर्सल है, अभी तो और आगे देखना है कैसे भारत में गृह युद्ध होना है। तो वो तो रिहर्सल थी। फिर उन्हीं सालों में 1945-45 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, क्वेटा शहर, वो बलूचिस्तान में है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वहां पर आया था इतना बड़ा भूकंप जो पूरा शहर का शहर खत्म हो गया था, सब दब गया था। तो भी बाबा से पूछा, बाबा ये क्या विनाश, यही विनाश है, तो कहा नहीं, ये भी रिहर्सल है, अभी तो रिहर्सल होते ना फाइनल से पहले, तो ये तो माना विनाश का रूप क्या होगा। तो उस समय ये स्थिति थी, लेकिन ये लोग बिल्कुल सुरक्षित थे, जैसे शिव परमात्मा की छत्र छाया में इतने सुरक्षित, जो इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। लोग आते थे, आतंक फैलाने वाले तो आते थे, उनसे पूछते थे, आप लोग कौन से धर्म के हो, तो ये कहते थे, हम मानवता धर्म के हैं। अब हिंदू हो तो जाओ, बाहर हिंदुस्तान जाओ, अगर नहीं हो यहाँ रहना है तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो सर कटवाओ, कतलेआम सर कटवाओ। तो ये तीन ऑप्शंस थे, चौथा ऑप्शन था ही नहीं कि हम हिंदू हो करके रहें। तो लेकिन इनका बिल्कुल बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि मानवता धर्म के, तो मानवता धर्म तो हम तो समाज की सेवा करने के लिए है। तो और इनों के अंदर इतनी वो पवित्रता आ गई थी, इतनी शक्ति का अनुभव होता था कि जो उनके सामने आते थे इनको इतना रिस्पेक्ट देते थे। तो जैसे कि परमात्मा ने इनको सुरक्षित रखा और बंटवारा पूरा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया और ये तो पाकिस्तान में ही रहे थे, कराची में थे। तो फिर शिव परमात्मा का आदेश हुआ कि बाबा बताएंगे, क्योंकि भारत में ही जाना है, वहां नहीं रहना है। तो 1950 में जब भारत गणतंत्र बन गया, 26 जनवरी को सब कुछ अलग हो गया, उस समय शिव परमात्मा का आदेश मिला इनको, अभी भारत में जाना है और भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनेगा, भारत ही विश्व गुरु बनेगा, भारत में ही फिर से स्वर्ग आना है और आपको ये विशाल कार्य करना है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने का। अब भारत में जाएं तो कहाँ जाएं? तो भी बाबन ने साक्षात्कार कराया कि पहाड़ पर जाना है, पहाड़ पर, क्योंकि कराची में रहते हैं, वो सागर का किनारा है कराची, तो पहाड़ पर जाना है। तो कौन सा पहाड़ ढूंढे? तो ये जो माउंट आबू पहाड़ है ये कराची से बहुत दूर नहीं है। आप लोग पीस पार्क गए, पीस पार्क होकर आए, तो पीस पार्क जब गए होंगे तो वो तो करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर है, ये माउंट आबू 4000 फीट की ऊंचाई पर है। और उस सबसे ऊंचा अरावली जो पहाड़ है, ये उनकी सबसे ऊंची चोटी ये माउंट आबू में ही है, वो गुरु शिखर है, वो 6000 फीट की ऊंचाई पर है। तो आपने पीस पार्क जाते समय देखा होगा कि वहां से कितना नीचे देखा होगा ना सब खाई, तो वहां पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे कराची है, ज्यादा दूर नहीं है कराची यहाँ से, ये पश्चिम बॉर्डर है भारत का, तो कराची यहाँ से बहुत नजदीक है। तो कैसे ये माउंट आबू चुना गया? और भी कई पहाड़ थे, नैनीताल, शिमला, मसूरी, कश्मीर, ये सब बहुत कुछ थे, लेकिन परमात्मा ने ये पहाड़ ढूंढा। ये माउंट आबू की बहुत बड़ी विशेषता है, यहाँ पर ये जो आसपास जो राजे रजवाड़े थे, राजाएं तो रहते थे ना चारों ओर, राजस्थान में तो कितने राजाएं थे, हर एक शहर का अपना अपना राजा था। वो यहाँ गर्मी के दिनों में आके रहते थे, यहाँ बहुत महल है चारों तरफ, बीकानेर पैलेस, जोधपुर पैलेस, जयपुर पैलेस आदि आदि। तो जब भारत का बंटवारा होने के बाद राजाई खत्म हो गई भारत में, तो इनों के यहाँ महल थे, क्योंकि गर्मी के दिनों में राजाएं यहाँ आके रहते थे, अप्रैल में जून 3 महीना जैसे उनकी वो कैपिटल माउंट आबू था राजस्थान वालों का। और जुलाई अगस्त सितंबर बहुत बारिश पड़ती थी, इतनी बारिश जो बात मत पूछो, और अक्टूबर से इतनी ठंडी शुरू हो जाती थी, मार्च तक जबरदस्त ठंडी, जनवरी में तो एकदम ठंडी, तो और फिर अप्रैल मई जून, तो 3 महीना ये राजा महाराजा लोग यहाँ रहते थे। फिर जब राजाई खत्म हो गई तो इन्होंने ये सारे महल जो इनके यहाँ आबू में बने हुए, या तो वो होटल है, या तो हॉस्टल है, या तो मतलब होटल या हॉस्टल या स्कूल है, या कई स्कूल है इन महलों में, कई स्कूल्स अभी यहाँ यही है पास में, अलवर पैलेस है, आप जब ज्ञान सरोवर आते हैं, अभी तो पेड़ों से ढक गया है, वो अलवर पैलेस है, अलवर स्टेट का राजा यहाँ आते थे, तो अभी वो स्कूल है, तो इसीलिए वो सब बदल गया। और दूर दूर से यहाँ स्कूल में आके पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए बदल गया सब कुछ। तो माउंट आबू पहाड़ उनको पसंद आया, और यहाँ पर ब्रिज कोठी भरतपुर राजा का महल है, जहाँ आपने टैक्स भरा होगा ना, टोल टैक्स आबू आने के लिए, तो वहाँ ही एक बहुत बड़ा महल है, तो वो किराए पर ले लिया माउंट आबू में। लेकिन जब वहां से निकले जो और हिंदू लोग निकले वहां से तो हाथ खाली, नंगे पैर, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गए। लेकिन यहाँ ये बहनें माताएं इस संस्था में, सॉरी, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, वहां कुछ भी नहीं, एक सुई भी नहीं छोड़ी। क्योंकि उस समय का जो चीफ मिनिस्टर था सिंध का, जो चीफ मिनिस्टर था वो बाबा का बड़ा दोस्त था, अल्लाह बख्श उसका नाम था, बाबा वर्णन करते अल्लाह बख्श। तो वो चीफ मिनिस्टर था तो उनके मित्र थे, तो अगर कोई आतंक फैलाने वाला भी आता था ना तो वहां पर सिक्योरिटी रख दी थी ताकि कोई अंदर भी आ न सके। और फिर इन्होंने कहा कि अभी हम भारत में जाएंगे, तो शांति तो हो गई थी, ये सब खत्म हो गया था जो हंगामा। तो इन्होंने कहा हम जाएंगे, तो अब तो उसने चीफ मिनिस्टर ने उनको कहा आप अपना सारा सामान लेके जा सकते हो। तो देखो अपना सारा बैग बैगेज सब कुछ पैक करके ले आए, एक सुई भी नहीं छोड़ी वहां, क्योंकि सब कुछ वहां से ले आए। और एक जहाज उनको दिया गया, जहाज उनको दिया चीफ मिनिस्टर ने दिया, और सारा सामान जहाज में लेकर के आए। तो यहाँ वो जहाज ओखा बंदरगाह है, ये जहाज का दृश्य है कैसे जहाज में बैठे हैं, कराची से भारत में आए ओखा, ये सौराष्ट्र में ओखा बंदरगाह है, तो वहां पर उतरे और वहां से ट्रेन से आबू आए, तो यहाँ पर आके रहे। तो 14 साल के बाद दुनिया देखी इन्होंने, क्योंकि दुनिया तो बाहर तो गए नहीं कहीं, तो कैसे उस समय की ट्रेन है, 1950 की ट्रेन है ये, कैसे बाहर झांक के देख सकते, अभी तो झांक भी नहीं सकते ना, वो शीक लगी रहती है। तो उस समय की ये ट्रेन है 1950 की, और फिर आबू रोड स्टेशन भी ऐसा ही था, अभी तो कितना अच्छा बन गया है आबू रोड स्टेशन, तो उस समय तो बस ऐसे ही था। और माउंट आबू में उनका आना हुआ, तो माउंट आबू जो है ये जंगल है, चारों ओर जंगल, उस समय चीते भी बहुत थे, भालू बहुत है, अभी तक भी भालू आते रहते, इसीलिए हम लोग कहते हैं आप लोग रात को बाहर नहीं जाना क्योंकि भालू यहाँ घूमते हैं। तो इसलिए जंगल है चारों तरफ, लेकिन बाबा ने कैसे ये माउंट आबू चुना, क्योंकि बहुत शांत प्रिय है, या कभी कुछ ऐसी बुरी एक्टिविटी कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी, कोई चोरी चकारी कोई उस रूप से नहीं, सब कुछ यहाँ के जो मजदूर है ना वो भी इतने ईमानदार है, आपका 5 पैसा भी गिरा हुआ होगा वो भी कभी नहीं उठाएंगे, यहाँ इतने ईमानदार है, बहुत अच्छे, बहुत मानो कि आप सचमुच यहाँ आए हो, एक स्वर्ग में आए हो। बाहर जाओ तो दुनिया में तो कितना डर है, पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा, यहाँ तो बिल्कुल आप सुरक्षित भगवान की छत्र छाया के अंदर हो। तो कैसे यहाँ आना हुआ, अब अप्रैल में जून मई में आए थे 1950 मई में, तो बताती थे वहां दादियां 5-5-50 5 मई 1950 को यहाँ पहुंचे थे। तो उस समय तो बड़ा अच्छा मौसम था, लेकिन जैसे जुलाई का महीना शुरू हुआ बारिश, अगस्त को तो कहते थे डिसगस्ट, इतनी बारिश सब गीला गीला गीला, कोई कपड़े नहीं सूखते थे कुछ भी नहीं, सितंबर तक, और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इतनी ठंडी। तो बाबा से कहते थे बाबा ये हम कहाँ आए हैं, ये जंगल है चारों तरफ, कुछ खेती भी नहीं होती है यहाँ पर, कुछ भी नहीं, सब बाहर से आता है, सब नीचे से आता है। तो परंतु वातावरण बहुत शांत है, तो तपस्या के लिए तो बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ चारों ओर गुफाएं हैं, वहां पर बैठ करके ऋषि मुनि कैसे तपस्या करते थे, इसलिए तपस्या स्थली है ये माउंट आबू, और बहुत मंदिर है चारों तरफ, मंदिर ही मंदिर है। तो वैसे तो बहुत ही शुद्ध स्थान है, लेकिन और कुछ उपज नहीं है, पथरीली जमीन है पर बारिश बहुत होती है। तो बाबा से पूछते थे बाबा ये कहाँ आए हैं, तो बाबा कहते थे एक दिन ऐसा आएगा जो सारी दुनिया यहाँ आएगी, सारी दुनिया आएगी। हाँ तो देखो आज हम देख रहे हैं कैसे सारी दुनिया यहाँ आ रही है, इतने 140 देशों से लोग आते हैं, तो वो भी हम अभी देख रहे हैं। तो इसीलिए वो तो अभी नजारे देख रहे, लेकिन उस समय तो बाबा यही कहते थे कि बच्चे आएंगे तो लगता पता नहीं आएंगे कैसे आएंगे, या तो जंगल है, बस्ती भी इतनी नहीं थी, मुश्किल से 10,000 लोग यहाँ रहते होंगे। लेकिन यहाँ अभी तो यहाँ CRPF है, ये बॉर्डर पुलिस है और आर्मी है, एयरफोर्स है, अभी तो बहुत कुछ है, कई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, या स्कूल की भी टीचर्स की भी ट्रेनिंग्स यहाँ होती है, तभी तो बहुत कुछ एक्टिविटी। लेकिन उस समय की मैं बात कर रही हूँ, तो कैसे बाबा भी पहाड़ों पर जाकर के तपस्या करते थे, बिल्कुल ये बाबा का तपस्या का दृश्य है। और फिर मम्मा भी तपस्या करती थी, तो कैसे बाबा और मम्मा ये हमारे अलौकिक रूप से माता पिता बने जिन्होंने सबकी पालना की, और कराची से यहाँ आ गए और यहाँ पर दूर दूर जंगलों में जाकर के तपस्या करते थे। 1952 में फिर हम लोगों को निमंत्रण मिला, माउंट आबू में रहते थे तो जो बहनें समर्पित हुए उनके रिश्तेदार सब इंडिया में भारत में आ गए थे, तो उनको जैसे पता चला तो निमंत्रण दिया कि आप हमारे पास आइए, हम आपने इतना 14 साल तपस्या की है तो हम आपसे ज्ञान लेना चाहेंगे, आपसे हम प्राप्ति कुछ करना चाहेंगे। तो फिर कैसे 1952 में ये हमारी मनोहर इंदिरा दादी है, जो 1952 में इनको अपने घर से निमंत्रण आया, लौकिक घर, इनके माता पिता थे, इनके भाई बहन, वो दिल्ली में रहते थे, तो निमंत्रण मिला तो बाबा ने इनको भेजा। मनोहर दादी यहाँ रहते थे, ज्ञान सरोवर का भी डायरेक्टर थे, अभी कुछ साल पहले इन्होंने शरीर छोड़ा, तो इनको बाबा ने दिल्ली भेजा। और दिल्ली में अपने घर में तो गई ज्ञान देने के लिए, लेकिन जैसे वो अपने घर में अपने रिश्तेदारों को ये ज्ञान देती थी, ये ओम की ध्वनि करती थी, तो जो उनके रिश्तेदार थे इनसे देवी का साक्षात्कार होने लगा, अब ये साक्षात्कार फिर चालू हो गए। और फिर मंदिरों से निमंत्रण मिला, देवियों के मंदिरों में से निमंत्रण मिला, तो वहां भाषण करती थी, तो वहां भी भक्तों को इनसे देवी का साक्षात्कार होने लगे। फिर तो इतने भक्त हो गए, इतने चारों ओर सत्संग इनका फैल गया, लोगों को पता चला, तो जमुना किनारे, दिल्ली में जमुना किनारा है, वहां पर बैठ करके सत्संग कराते थे। तो करीब एक महीना दिल्ली में रह करके बहुत सेवा हुई। अब इन्होंने कहा वापस जाना चाहेंगे माउंट आबू, और भी बहनें थी, तो वो जो भाई बहनें जिन्होंने सत्संग सुना, मेडिटेशन किया, उन्होंने कहा अब चले जाएंगे फिर हमारा क्या होगा। तो बाबा ने इनको कहा कि अगर वो चाहते हैं कि आप लोग वहां रहो और सेवा करो तो उनको कहो एक मकान लेके देवे, तब तक कोई सेवा केंद्र नहीं थे, अब एक मकान लेके देवे तो हम उस मकान में रह करके सेवा करेंगे, अभी घर में भी कहाँ तक रहेंगे। तो उन्होंने कहा मकान लेना क्या बड़ी बात है, यहाँ उस समय तो बहुत सहज था, तो एक मकान लेके दिया और हमारा पहला सेवा केंद्र आबू से बाहर दिल्ली में खुला 1952 में, और वहां पर बहनें सेवा करने लगी। फिर उसके बाद और जगह से निमंत्रण मिलने लगे, अमृतसर से निमंत्रण मिला, बेंगलोर से निमंत्रण मिला, मुंबई से निमंत्रण मिला, और हमारी जिन जिन बहनों ने इतनी तपस्या की बाबा ने उन सबको भेजा कि जाओ सेवा करो, और धीरे धीरे भारत के चारों तरफ सेवा केंद्र खुल गए। और वहां से फिर भाई बहने आते थे मधुबन, पांडव भवन वो हमारा ओरिजिनल जो मुख्य केंद्र है, तो भरतपुर राजा की कोठी को से वापस हम दूसरे स्थान पर आए, ये नजदीक में है वो ढोलपुर हाउस और कोटा हाउस, ये कोटा ढोलपुर ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान के, तो उनके ही महल है, तो वहां रहे। और ये जहाँ पांडव भवन में आप आए उसका नाम है पोखरान हाउस, वो पोखरान एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, जिनके ये राजा की कोठी थी, जो पहली कोठी जहाँ बाबा का कमरा आपने देखा होगा, तो वो पोखरान हाउस कहलाता था। पोखरान जहाँ पर पहला एटम बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया इंदिरा गांधी ने, फिर वाजपेयी जी ने, तो पोखरान रणभूमि है राजस्थान की। तो वहाँ तो उसके ये ठाकुर थे जो जिनकी सारी जमीन थी, तो उनसे खरीद ली गई थी, तभी नाम रखा पांडव भवन। तो फिर कैसे सेवा केंद्र खुलते गए और आज तो हम देख रहे हैं कितने हजारों सेवा केंद्र हैं। तो भाई बहने इन सेवा केंद्रों से आते थे और मम्मा और बाबा अलौकिक रूप से मात पिता इनकी कैसे पालना करते थे। मम्मा भी बहुत तपस्या करती थी, बहुत तपस्वी मूर्त थी। और 1965 में फिर मम्मा कैसे बाहर जाती थी, मम्मा से लक्ष्मी का साक्षात्कार सबको हुआ। पहले हैदराबाद सिंध में तो राधिका हुआ, फिर लक्ष्मी का साक्षात्कार करते थे। बहुत भावना लोगों की बैठती जाती थी और मम्मा ने बहुत ट्रैवल किया चारों ओर भारत में। ये लखनऊ में मम्मा का प्रोग्राम था, फिर मम्मा कानपुर में गई, तो ये सब मम्मा जहाँ जहाँ भारत में गई वहाँ भी सेवा केंद्र खुलते गए। और पर मम्मा भी बहुत तपस्या करती थी। दादी प्रकाशमणि अधिकतर मम्मा के साथ रहती थी, तो दादी प्रकाशमणि को कहते थे मुन्नी मम्मा, यानी थ्री फोर्थ मम्मा, क्योंकि बिल्कुल मम्मा जैसे ही उनमें संस्कार थे। ये तो उस समय शुरू में आई तो ये 14 साल की थी, मम्मा 17 साल की थी, 2-3 साल का ही फर्क था, लेकिन बहुत तपस्या करते थे। और फिर मम्मा कैसे अशरीरी बनती गई, बहुत ऊंची मम्मा की स्टेज थी। और बाबा और मम्मा बस तपस्या यहीं रहते थे, तपस्या करते थे और बच्चों के ने जाके सब जगह सेवा केंद्र खोले। लेकिन 1965 24 जून को मम्मा ने अपना देह त्याग किया। 45 साल की उम्र में मम्मा ने अपना देह त्याग किया। और उसके बाद हमारी दीदी मनमोहिनी जी वो संचालन करने लगी मम्मा के बाद, तो मधुबन में वो रहने लगे। पहले वो दिल्ली में रहती थी। इनकी भी बहुत बड़ी कहानी है कैसे ये बहुत बड़े धनाढ्य परिवार की थी। इनका पूरा परिवार सिंधी फैमिली, जो हैदराबादी फैमिली, वो कई जो सिंधी लोग भारत में आए तो खास करके हैदराबाद के लोग, सिंधी लोग, उन्होंने मुंबई में जैसे केसी कॉलेज है, किशनचंद चेलाराम कॉलेज, तो वो कॉलेज उन्होंने शुरू किया। फिर वहाँ जसलोक हॉस्पिटल है मुंबई में, तो जसुमती लोकुमल ये इनके चाचा चाची थे, तो उन्होंने मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल, जो जसलोक हॉस्पिटल है, वो शुरू किया। तो ऐसे हॉस्पिटल और कॉलेज इनके परिवार वालों ने शुरू किया, तो बहुत धनाढ्य परिवार की थी ये। पर वो तो सब मुंबई आ गए और ये समर्पित हो गई। तो फिर दीदी मनमोहिनी यहाँ रहती थी और वो संभालती थी। और फिर बाबा भी जाते थे, ये दिल्ली में बाबा गए हुए हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बाबा के आगे गीत गा रहे हैं, तो बहुत सत्संग बाबा कराते थे। और माउंट आबू भी परिवार के परिवार आते थे, ये सब अलग अलग परिवार है माउंट आबू में जो पांडव भवन में आए हुए हैं। तो छोटे बच्चे बड़े सब बुजुर्ग सब आते थे बाबा से मिलने के लिए। और बाबा कैसे अलौकिक पिता के रूप में सबकी पालना करते थे, बाबा अपने हाथ से प्रसाद देते थे। तो जब विदाई, जब वो छुट्टी लेते थे तो बाबा कैसे उनको विदाई देते थे, ये अलग अलग छोटे छोटे दृश्य हैं। तो यहाँ पर जो भी आते थे वो अनुभव करते हैं अभी भी कि ये सब आत्माओं के लिए खुला है। कोई भी धर्म वाला हो, जाति व भाषा वाला हो, सबका पिता तो एक ही है। हम सब परम पिता परमात्मा की संतान हैं। तो कैसे इन्होंने कराची में तपस्या की, साक्षात्कार किए, फिर माउंट आबू में आकर के तपस्या की और सेवा केंद्र खोले। और यही बाबा कहते थे कि परमात्मा एक है, उनको याद करो। ये हम कहते हैं ना भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो किस हिसाब से भाई भाई? माता पिता तो हर एक अलग अलग है, तो भाई भाई कैसे? तो राजनीति के अनुसार तो हम कहेंगे भाई यहाँ धर्म निरपेक्षता है, यहाँ सब धर्मों को समान मान्यता है और हर एक अपने अपने धर्म का जो स्वरूप है उसके अंदर वो चल सकता है, कोई रोकथाम नहीं है, इसलिए भाई भाई है। लेकिन आध्यात्मिक रीति से अगर हम अर्थ लें, भाई भाई माना एक पिता के हम बच्चे हैं, फिर चाहे उनको खुदा कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, शिव कहो, वो परमात्मा एक है। और वसुधैव कुटुंबकम है, हम सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान है, तो उस हिसाब से हम सब भाई भाई है। तो ये शिव बाबा हमें सिखाते थे कि एक परम पिता परमात्मा है। तो बाबा को बच्चे पत्र लिखते थे, आपने बाबा की झोपड़ी देखी होगी ना पांडव भवन में, जहाँ बाबा पत्र लिखते थे। मुझे भी पत्र लिखा था, मुझे तो ये भी बड़ा नशा है कि ब्रह्मा बाबा ने खुद अपने अपना हाथ से पत्र मुझे लिखा था, क्योंकि 1967 में मैंने बाबा को पत्र लिखा था, क्योंकि उस समय ये डिसाइड करना था कि मैं आगे क्या पढ़ूंगी। कॉलेज तो पढ़ रही थी, इंटर साइंस में थी, तो आगे मेडिकल लाइन लेनी है या इंजीनियरिंग लाइन लेनी है, क्या लेना है। तो ये मैंने बाबा को पत्र लिखा कि घर में सब कहते तुम डॉक्टर बनो। तो बाबा तो मुझे जानते थे क्योंकि बॉम्बे आते थे, मैंने बाबा के आगे इंग्लिश में भाषण किया था, तो बाबा ने पहले ही वरदान दे दिया था, बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो तो बाबा तुमको विदेश भेजेगा सेवार्थ। ये बाबा ने उस समय मुझे कहा था, मैं छोटी थी। लेकिन 1967 में जब बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मैं आगे क्या करूं, घर में कहते सब डॉक्टर बनो, तो बाबा ने मुझे पत्र में लिखा कि बाबा की आश है तुम्हारे लिए कि तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, सारे विश्व की सेवा, रूहानी डॉक्टर बनो। वो तो जिस्मानी डॉक्टर है, शरीरों का डॉक्टर है, पर ये आत्माओं का डॉक्टर, रूहानी डॉक्टर, ये ज्ञान की सेवा सारे विश्व में करो। तो फिर हमने अब वो डॉक्टरी पढ़ने का तो छोड़ दिया लक्ष्य, और बीएससी किया, बैचलर ऑफ साइंस। तो साइंस में बीएससी करने के बाद 69 में हम समर्पित हो गए और उसी साल ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे जब बाबा अव्यक्त हुए तो मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ कि बाबा अव्यक्त माना शरीर त्यागा। तो मैं पढ़ रही थी तब, कॉलेज में थी, बीएससी कर रही थी 69 में, 69 में। तो मैंने साक्षात्कार बहुत सुंदर किया, जैसे ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप मेरे सामने आया और बाबा को मैं कह रही हूँ बाबा आप तो चले गए और मैंने आपकी इच्छा पूरी नहीं की, फिर तो पढ़ ही रही हूँ। तो बाबा ने मुझे उसी समय वरदान दिया, बच्ची तुम बाबा की इच्छा पूरी करोगी। और मैं गया नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ ही हूँ, केवल कपड़ा यानी और कमरा, ये वस्त्र जो देह रूपी चोला है वो छोड़ करके अव्यक्त फरिश्ता का चोला धारण किया है और साकारी दुनिया को छोड़ अव्यक्त जो सूक्ष्म वतन है वहां का वासी बना हूं। तो मैं चला नहीं गया हूँ, मैं बच्चों के साथ ही हूँ। और अभी भी हम अनुभव करते हैं कैसे बाबा हम बच्चों के साथ ही है। तो बाबा पत्र लिखते थे इस झोपड़ी के अंदर बैठ करके, बच्चों से मिलते थे, पांडव भवन में देखा होगा चारों ओर बगीचा है, और फिर बाबा का हिस्ट्री हॉल है जहाँ पांडव भवन में बाबा इस खटिया इस तखत पर संदली हम कहते इस पर बैठ करके बाबा वाणी चलाते थे, मुरली चलाते थे, जो मुरली हम सब सुनते हैं सेवा केंद्रों पर वो यहाँ ही हिस्ट्री हॉल से बाबा मुरली चलाते थे। और फिर इस हिस्ट्री हॉल में इस समय तो कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अभी तो बहुत बड़ा ओम शांति भवन है तो बड़े प्रोग्राम्स वहाँ होते हैं, परंतु वहाँ हॉल तो बहुत बड़ा है लेकिन अकोमोडेशन कम है, रहने की व्यवस्था। तो तब ये ज्ञान सरोवर लिया गया, तो इसीलिए हिस्ट्री हॉल है। ये चार धाम हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा के हैं। तो ब्रह्मा बाबा 1969 में 93 वर्ष की उम्र में 18 जनवरी 1969 को देह त्याग किया और आश्रम के अंदर ही उनकी समाधि है। ये बाबा का कमरा है। तो हम चार धाम बताते हैं, एक बाबा की झोपड़ी, दूसरा हिस्ट्री हॉल, तीसरा बाबा का कमरा। और इसी कमरे में ही थे रात को लगभग 9 बजे, बाबा पलंग पर ही बैठे थे अपना, और कैसे दादी प्रकाशमणि उनके सामने गए। और दादी ने, क्योंकि उस समय उनको चेस्ट में पेन हुआ होगा, 93 वर्ष की तो उम्र थी, और दादी ने कहा बाबा बाबा, बाबा ने आंखें खोली और जैसे उस समय दादी ने हाथ पकड़ा और बस आंखें, दृष्टि और हाथ, इस दो से कैसे सारी जो शक्ति थी बाबा की, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा वो सारी दादी प्रकाशमणि को सौंपी। और उसके बाद जैसे दादी प्रकाशमणि फिर वो चीफ बनी। तो ये हिस्ट्री हॉल, ये बाबा का कमरा, और वहीं बाबा एंजेलिक ब्रह्मा बाबा, सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता ब्रह्मा बाबा बन गए। और फिर उनकी ही स्मृति में शांति स्तंभ है जहाँ ब्रह्मा बाबा के पार्थिव देह के अंतिम संस्कार किए गए थे, समाधि। तो वो भी आपने देखा होगा, शिव परमात्मा ने उनके माध्यम से जो ज्ञान दिया, महावाक्य उच्चारण किए, उसको वो सारे चारों तरफ लिखे गए हैं। तो टावर ऑफ पीस यानी शांति स्तंभ, और 18 जनवरी 1969 जब बाबा की आयु 93 वर्ष की थी, लेकिन अंत तक बाबा बिल्कुल फिट थे, सीधा बैठते थे, कभी चश्मा नहीं पहना, ये भी था। और फिर उसके बाद हर साल 18 जनवरी पर बहुत भाई बहने आते हैं शांति स्तंभ पर अपने श्रद्धांजलि ब्रह्मा बाबा को देने के लिए। फिर तो ये चार धामों की यात्रा भी करने आते हैं। तो शांति स्तंभ और हिस्ट्री हॉल और बाबा का कमरा और बाबा की झोपड़ी जहाँ ब्रह्मा बाबा, चारों इन स्थानों पर रहते विचरण करते थे। और फिर दादी प्रकाशमणि मुख्य प्रशासिका बनी। दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी ये दोनों मुख्य बने। और भी कई दादियां थी जो सीनियर दादियां हमारे यज्ञ की, जो उस समय 16 साल 17 साल 20 साल उस प्रकार की थी, तो वो सब हमारी दादी बन गई। दादी माना बड़ी बहन, सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं और बड़े भाई को दादा कहते हैं सिंधी भाषा में, बंगाली में भी दादा कहते हैं, तो इसीलिए दादी और दीदी और दादा। और फिर उसके बाद 1970 में कैसे हमारा पहला डेलीगेशन, पहला ग्रुप विदेश में गया वहाँ सेवाएं शुरू करने के लिए, और 1974 में वहाँ से विदेश से लंदन से एक ग्रुप आया। 72 में वहाँ हमारा पहला सेवा केंद्र खुला लंदन में, तो वहाँ पर सेवाएं शुरू हुई और वहाँ से भाई बहने या पांडव भवन आते थे। और 1983 में यूनिवर्सल पीस हॉल ओम शांति भवन बना जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हम लोग करते थे, यहाँ तक कि यूएन के भी हम मेंबर बन गए और यूनाइटेड नेशन से भी आते थे। तो और फिर 1987 में हम लोगों ने बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन रखा था यूनिवर्सल पीस हॉल में, बड़े बड़े महामंडलेश्वर बनारस से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से यहाँ आए थे माउंट आबू में, और सफेद वस्त्रधारी और गेरुए वस्त्रधारी दोनों का आप देखेंगे समावेश, समन्वय। और फिर ये ज्ञान सरोवर जो था, जो है वो 91 में ये जमीन ली गई थी, बिल्कुल बंजर जमीन थी, और 1995 में ये पूरा एकेडमी बनके तैयार हुआ और उसका उद्घाटन हुआ, इसका नाम रखा ज्ञान सरोवर। और फिर उसके बाद 91 में ही अपना बहुत बड़ा ग्लोबल हॉस्पिटल है माउंट आबू में, जो बहुत बड़ी सेवाएं दे रहा है, गांव-गांव में सेवाएं दे रहा है। देखा आप लोगों ने, हॉस्पिटल भी गए, ग्लोबल हॉस्पिटल गए, वो भी बहुत, और वह कैसे 50% जो स्टाफ है वो सब समर्पित है बाबा के इस हॉस्पिटल में, समर्पित है डॉक्टर्स चाहे पैरामेडिकल स्टाफ, और बहुत सेवाएं गांव-गांव में चारों ओर। यहाँ ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी लोग रहते हैं, ये पूरा एरिया जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, ये आदिवासी एरिया है, तो इसलिए भील लोग ज्यादा वो चारों ओर से यहाँ माउंट आबू भी आते हैं। तो वहाँ भी बहुत बीमारियाँ, आँखों की बीमारी, क्योंकि यहाँ रेत बहुत है, पहाड़ है, पत्थर है, रेत है, तो आँखों की बहुत तकलीफ होती है। तो यहाँ हमारा आँखों का भी हॉस्पिटल है नीचे शांतिवन में, ट्रॉमा हॉस्पिटल भी, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, हाईवेज है, तो बहुत अपने सब समर्पित डॉक्टर्स सेवाएं दे रहे हैं। तो फिर ये हॉस्पिटल है, और फिर बाबा ने जब ये 1995 में इस हारमोनी हॉल का उद्घाटन शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा, जैसे गुलजार दादी के तन में प्रवेश होके ये हारमोनी हॉल जो ऊपर है उसका उद्घाटन किया, तो बाबा ने कहा ये हॉल तो बहुत छोटा है, अब और बड़ा स्थान ढूंढो, तो माउंट आबू में तो कहाँ इतना बड़ा स्थान मिलेगा इससे, और यही मिला, वही गनीमत है। और यहाँ अभी तो कंस्ट्रक्शन भी बैंड है, कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं करने दे रहे हैं। तो फिर आबू रोड जहाँ तलहटी, जहाँ ये माउंट आबू का पहाड़ खत्म होता है और आबू रोड शुरू होता है, वहां पर हमारी 100 एकड़ जमीन है, देखा होगा वो भी, जिन्होंने वो देखा है वो हाथ उठाओ, शांतिवन सबने देख लिया, थोड़े होंगे, पर जब आप माउंट आबू आए होंगे तो उस समय बाई तरफ देखा होगा, तो वो भी अपना स्थान है जहाँ बहुत बड़ा हॉल है, 20,000 लोगों के बैठने का हॉल है, विदाउट पिलर्स, जहाँ कोई भी पिलर नहीं है, आप सोचो 20,000 लोग बैठ सकते हैं और बिना किसी खंभे के, तो बहुत ही सुंदर हॉल है जहाँ हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते रहते हैं इस हॉल में। और दादी प्रकाशमणि जी मुख्य रूप से वहाँ रह करके कैसे नीचे का डायमंड हॉल और पूरा शांतिवन प्रोजेक्ट, करीब 100 एकड़ जमीन है, उसमें कम से कम 20,000 लोग रह सकते हैं, 20-25-30,000 तक भी हो जाते हैं, और एक घंटे में 30,000 लोगों का भोजन बनता है, बहुत बड़ा सोलर प्लांट है, बहुत कुछ है सोलर प्लांट, तो इसमें कैसे सारी बिजली मिलती है, बहुत कुछ है, अगर आप लोग नीचे जाकर के भी और देखेंगे तो दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में ये सब बना। दादी प्रकाशमणि ने दादी प्रकाशमणि जी ने 25 अगस्त 2007 को अपना देह त्याग किया 85 साल की उम्र में, तो 2007 में इन्होंने अपना देह त्याग किया और नीचे शांति वन में वहाँ ही उनकी वही अंतिम संस्कार किया गया और उनकी समाधि बनाई है जिसका नाम है प्रकाश स्तंभ। तो आप शांति वन गए होंगे, वहाँ देखा होगा प्रकाश स्तंभ, तो वो दादी प्रकाशमणि जी का यादगार स्थान है। और उसके बाद दादी जानकी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी और 104 वर्ष की उम्र में 2019 में उन्होंने अपना देह त्याग किया, तो उनका भी यादगार है नीचे, उनको हम दादी जानकी का स्मारक कहते हैं, वो भी जरूर देखा होगा, देखा आप लोगों ने, सब देखे कि नहीं देखा, तो वो भी जरूर देखना आप। और फिर 2019 में उन्होंने देह त्याग किया। और दादी जानकी तो कमाल की थी, 100 साल की उम्र में भी दादी ने कितनी ट्रैवलिंग की, कितने देशों में दादी जानकी जी गए, कई बार गए, सारे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया। और दादी प्रकाशमणि यहाँ रहते थे और दादी जानकी जी लंदन में रहते थे, और सारे विश्व में जो हमारी सेवा केंद्र हैं वो दादी जानकी जी के कारण इतने आगे बढ़े। इतने भाई बहने समर्पित हुए हैं विदेशों के भी दादी जानकी के कारण। और नीचे शांतिवन में हमारी बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ कुमारियों की ट्रेनिंग होती रहती है, टीचर्स की ट्रेनिंग होती रहती है, बहुत कुछ है। आप नीचे जाएंगे सब जरूर देखना। और हजारों की सभा में कैसे ये दादियां हमारी भाषण करती थी, ये भी देखो। 100,000 की सभाओं में भी दादी जानकी ने भाषण किए हैं, दादी प्रकाशमणि जी ने भी किए। और फिर दादी जानकी के साथ एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी दादी हृदय मोहिनी जी, जिनकी विशेषता थी कि कैसे इनके माध्यम से शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा इनके तन में प्रवेश होते थे और वाणी चलाते थे, जिसको हम कहते हैं अव्यक्त बाप दादा। ये तो दादी हृदय मोहिनी जी और दादी जानकी जी थे। तो दादी हृदय मोहिनी जी ने भी 95 वर्ष की उम्र में पिछले साल ही 2020 में शिवरात्रि के दिन अपना देह त्याग किया। और इनका भी यादगार नीचे शांतिवन में अव्यक्त लोक के रूप में बन रहा है, जो अगले साल, इस साल इन्होंने देह त्याग किया 2021 में शिवरात्रि पर 11 मार्च को। तो अगले साल 11 मार्च को उसका उद्घाटन करेंगे, अभी वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी और दादी हृदय मोहिनी, ये तीन हमारे सबसे वरिष्ठ दादियां थे। मम्मा के बाद उनकी तीनों की के स्मृति स्थान, उनकी समाधि नीचे है और पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा की। तो जरूर आप जाएंगे, सब देखेंगे और अनुभव करेंगे कि अभी हमारी और दादी है, दादी रतन मोहिनी जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो भी उसी समय की ही है, 1937 में 36 में, तब वो 11 साल की थी, अभी 97 ईयर्स की है, 97 साल की है, वो नीचे ही रहते हैं। और उनके साथ हमारे और भी है जो जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, लेकिन जो मुख्य स्पिरिचुअल हेड है, आध्यात्मिक हेड, सत हमारा जो कोई यहाँ पर कोई गुरुडम नहीं है, ब्रह्मा बाबा हमारे गुरु नहीं थे, ब्रह्मा बाबा को हम अलौकिक पिता कहते हैं। तो अलौकिक मात पिता और हम सब परिवार, और दादी दीदी माना बड़ी बहनें, तो इसीलिए सतगुरु तो हम सबका एक ही परमात्मा है, जिनको हमें याद करना है। बाकी ये सारा संचालन कितना सुंदर रूप से होता है, ये तो आप जब और सेवा केंद्रों पर ज्ञान लेंगे, मुरली सुनेंगे, समझेंगे, बहनों के नजदीक आएंगे, तो आपको पता चलेगा कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अभी तो आप यहाँ आए हो, ये भी आपका बहुत बड़ा भाग्य है, और मुझे उम्मीद है, उम्मीद तो क्या, विश्वास है कि आप जरूर वापस जा करके रेगुलर स्टूडेंट बनेंगे। हाँ, बनेंगे ना, अभी भी जाते होंगे, जाते तो होंगे। तो कई लोग आते हैं ना यहाँ, कहते हैं कि आप लोगों की फीस क्या है, आपकी इतनी बड़ी एकेडमी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, आपकी विश्वविद्यालय कहते हो, आपकी फीस क्या है? तो हम कहते हैं हमारी फीस है 5 खोटे पैसे और 1 आना, 5 खोटे पैसे और 1 आना। कौन से 5 खोटे पैसे? 5 विकारों का दान दो और 1 आना, माना संकल्प करके जाओ कि रोज एक बार सेवा केंद्र पर जाएंगे, तो वहाँ एक बार रोज आना सेवा केंद्र पर, ये यहाँ की फीस है। तैयार हो सब देने के लिए? हाँ, जो तैयार है वो हाथ उठाए। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो आपको बाबा की आशीर्वाद है, जरूर आप सदा आगे बढ़ें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, कमल सदृश बनाएं और शिव बाबा के सच्चे आज्ञाकारी बच्चे बन करके उनके मददगार बने और इस संसार को बदल कर फिर से सतयुग बनाने के लिए सभी अपना पुरुषार्थ करें, यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।